एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
संदेश तेरा, झरने गाए शांति का संदेश तेरा, धन्य है पवित्र है नाम यीशु तेरा, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर, जिंदगी की राह में साथ है तेरा, जिंदगी की राह में साथ है तेरा, तेरे बिन दिखे मुझे घोर अंधेरा, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तू ग्रहण कर, हमारे मनों को खोल दे पिता, जैसे हम तेरे वचनों को सुनते हैं, ताकि हम तेरे वचन को सुन करके उसे समझ सके और उसे आशीष पा सके। हमें तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मदद कर। मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो पिता, ताकि वे तेरे राह में चलने सकें। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है महान विवाद, उसकी उत्पत्ति और मुद्दे। इस समय संपूर्ण मानवता परमेश्वर के चरित्र, उसकी व्यवस्था एवं ब्रह्मांड पर उसकी संप्रभुता के विषय में मसीह एवं शैतान के बीच एक महान विवाद में शामिल है। यह संघर्ष स्वर्ग में उत्पन्न हुआ जब एक सृजित प्राणी चुनाव की स्वतंत्रता के साथ संपन्न आत्म उत्थान में शैतान बन गया, परमेश्वर का विरोधी और स्वर्गदूतों के एक हिस्से को विद्रोह में ले गया। आदम और हवा को पाप में डालकर उसने इस संसार में विद्रोह की भावना का आरंभ किया। शास्त्र अच्छे और बुरे, परमेश्वर एवं शैतान के बीच एक ब्रह्मांडीय युद्ध का चित्रण करता है। इस विवाद को समझ लेना, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को शामिल किया है, इस प्रश्न का उत्तर देने में सहायक है कि यीशु इस ग्रह पर क्यों आया। रहस्यों का रहस्य, अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष स्वर्ग में शुरू हुआ। एक उत्तम वातावरण में संभवतः पाप कैसे उत्पन्न हो सकता है? स्वर्गदूतों को मनुष्यों की तुलना में एक उच्च क्रम के प्राणी, भजन संहिता 8:5, परमेश्वर के साथ अंतरंग संगति का आनंद लेने के लिए रचा था, परमेश्वर ने उन्हें बनाया था। प्रकाशित वाक्य 1:1, 3:5 और 5:11 में हम पाते हैं, श्रेष्ठ सामर्थ के साथ और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी, भजन संहिता 103:20, वे सेवक या सेवा टहल करने वाली आत्माओं के रूप में कार्य करते हैं। हम इसे पढ़ते हैं इब्रानियों 1:14 में। हालांकि आमतौर पर अदृश्य कभी कभी वे मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। देखिए उत्पत्ति 18:19, इब्रानियों 13:2, इन्हीं में से एक दिव्य प्राणी के द्वारा ब्राह्मण में पाप लाया गया। लूसीफर के लिए अलंकारिक विवरण के रूप में शोर एवं बाबुल के राजाओं का उपयोग करते हुए पवित्र शास्त्र यह प्रकाशित करता है कि यह लौकिक विवाद कैसे शुरू हुआ। लूसीफर भोर का चमकने वाला तारा, छाने वाला अभिषिक्त करूब, परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करता था। कहता है यशायाह 14:12 और एजेकियल 28:14 में भी हम इस बात को पा सकते हैं। शास्त्र कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हम पढ़ते हैं इसे इजेकियल 28:12-15 में। यद्यपि पाप का उठना अकथनीय और अनुचित है, इसकी जड़ों को लूसीफर के घमंड से जोड़ा जा सकता है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। कहता है इजेकियल 28:17। लूसीफर ने सृष्टिकर्ता द्वारा दिए गए उच्च पद के साथ संतोष करने से इनकार कर दिया। स्वार्थ में उसने स्वयं परमेश्वर के साथ समानता की आकांक्षा की। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यह शैतान का सोच और कहना था। हम पाते हैं लिखा हुआ यशायाह 14:12-14 में। लेकिन हालांकि वह परमेश्वर का पद चाहता था, परंतु वह उसका चरित्र नहीं चाहता था। उसने परमेश्वर के अधिकार को तो समझ लिया, परंतु उसके प्रेम को नहीं। परमेश्वर के राज के विरुद्ध लूसीफर का विद्रोह उसका शैतान एक विरोधी में परिवर्तन होने का पहला कदम था। लूसीफर के गुप्त कार्यों ने परमेश्वर के प्रेम के प्रति कई स्वर्गदूतों को अंधा कर दिया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर के राज्य के प्रति असंतोष एवं विश्वासघात तब तक बढ़ता गया जब तक एक तिहाई स्वर्गदूत समूह विद्रोह में शामिल नहीं हो गए। प्रकाशित वाक्य 12:4। परमेश्वर के राज्य की शांति ध्वस्त हो गई और फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। प्रकाशित वाक्य 12:7 कहता है, स्वर्गीय युद्ध के परिणाम स्वरूप शैतान बना, जो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप इब्लिस और शैतान कहलाता है, जिसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। कहता है प्रकाशित वाक्य 12:9। मनुष्य किस प्रकार इस महान विवाद में शामिल हुआ, महान संघर्ष में शामिल हुआ। स्वर्ग से उसके निष्कासन पश्चात शैतान ने अपना विद्रोह हमारी पृथ्वी पर फैला दिया। एक बोलने वाले सांप के रूप में भेष बदलकर एवं उन्हीं तर्कों का उपयोग करते हुए जो स्वयं उसके पतन का कारण बने, उसने प्रभावी रूप से आदम व हवा का अपने सृष्टिकर्ता में विश्वास को कमजोर कर दिया। उत्पत्ति 3:5। शैतान ने हवा में उसके नियुक्त स्थान के प्रति असंतोष पैदा कर दिया। परमेश्वर के साथ समानता की संभावना से प्रभावित होकर उसने बहकाने वाले के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर के वचन पर संदेह किया। परमेश्वर के आदेश की अवहेलना करते हुए उसने फल खाया और अपने पति को भी ऐसा करने के लिए प्रभावित किया। अपने सृष्टिकर्ता से बढ़कर सांप के वचन पर विश्वास करने से उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास एवं निष्ठा को खो दिया। दुख की बात है कि स्वर्ग में शुरू हुए विवाद के बीच ने ग्रह पृथ्वी में अपनी जड़ें जमा ली। देखिए उत्पत्ति 3 को। हमारे पहले माता पिता आदम और हवा को पाप करने के लिए प्रेरित करके शैतान ने चतुरतापूर्वक उनसे पृथ्वी पर उनके अधिकार को छीन लिया। अब इस जगत का सरदार होने का दावा करते हुए शैतान ने अपने नए मुख्यालय ग्रह पृथ्वी से परमेश्वर, उसके राज्य और संपूर्ण ब्राह्मण की शांति को चुनौती दी। मसीह और शैतान के बीच संघर्ष के प्रभाव जल्द स्पष्ट हो गए जब पाप ने मानवता में परमेश्वर की छवि को विकृत कर दिया। यद्यपि आदम और हवा के माध्यम से परमेश्वर ने मानव जाति को अपने अनुग्रह की वाचा प्रदान की, उत्पत्ति 3:15, उनकी प्रथम संतान कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी, उत्पत्ति 4:8। दुष्टता कई गुना बढ़ती चली गई जब तक कि परमेश्वर को मनुष्य के विषय में दुखी होकर यह कहना पड़ा कि उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, कहता है उत्पत्ति 6:5। परमेश्वर ने संसार को उसके अपस्थापी निवासियों से शुद्ध करने और मानव जाति को एक नई शुरुआत देने के लिए महान जल प्रलय का उपयोग किया, उत्पत्ति 7:17-20। परंतु जल्द ही विश्वसनीय नूह के वंशज परमेश्वर की वाचा से दूर हो गए। हालांकि परमेश्वर ने संपूर्ण पृथ्वी को दोबारा प्रलय से नष्ट न करने की प्रतिज्ञा की, उन्होंने जानबूझकर उसमें ठोस अविश्वास जताकर स्वर्ग तक पहुंचने के प्रयास में बाबुल की मीनार को खड़ा कर दिया, जो इस तरह वह किसी भी आने वाली प्रलय से बचने का एक साधन होगा। इस बार परमेश्वर ने उनकी सार्वभौमिक भाषा को उलझाकर मनुष्य के विरोध को कुचल दिया, उत्पत्ति 9:1-11। कुछ समय पश्चात कुल धर्म त्यागी दुनिया के साथ परमेश्वर ने इब्राहिम को अपनी वाचा प्रदान की। इब्राहिम के माध्यम से परमेश्वर ने संसार की संपूर्ण जातियों को आशीष देने की योजना बनाई, उत्पत्ति 12:1-3, 22:15-18। फिर भी इब्राहिम के वंशजों की आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर की अनुग्रहपूर्ण वाचा के प्रति विश्वासहीन साबित हुई, पाप में फंसे। उन्होंने वाचा के रचियता एवं जमानती यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर महाविवाद में शैतान को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता की। अय्यूब की पुस्तक में ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक लौकिक सभा का विवरण महाविवाद की अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस जीवन एवं मृत्यु के संघर्ष का केंद्रीय मुद्दा क्या है? परमेश्वर का राज्य एवं व्यवस्था है। परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था उसके ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी की भौतिक व्यवस्थाएं जो इसे एक साथ बनाए रखती हैं एवं इसे क्रियाशील करती हैं। पाप तो व्यवस्था का उल्लंघन है, 1 यूहन्ना 3:4, या अराजकता है, जिस प्रकार यूनानी शब्द अनोमिया संकेत करता है। अराजकता परमेश्वर और उसके राज्य को अस्वीकार करने से आती है। संसार में अराजकता की जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बजाय शैतान परमेश्वर पर दोष लगाता है। वह कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था जिसे वह एक पक्षीय होने का आरोप लगाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। इसके अतिरिक्त वह आरोप लगाता है कि क्योंकि इसका पालन करना असंभव है, यह व्यवस्था सृजित प्राणियों के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध काम करती है। व्यवस्था को निरंतर छल से छीन करके शैतान परमेश्वर के राज्य और यहाँ तक कि स्वयं परमेश्वर को उखाड़ फेंकने का प्रयास करता है। अपनी संसारिक सेवकाई के दौरान मसीह ने जिन परीक्षाओं का सामना किया, उन्होंने आज्ञाकारिता और परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण के विवाद की गंभीरता को प्रकट किया। उन परीक्षाओं का सामना करते हुए जिन्होंने उसे एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बनने के लिए तैयार किया, इब्रानियों 2:17, उसने उसी मुकाबले में घातक शत्रु का सामना भी किया। जंगल में 40 दिनों के उपवास के पश्चात शैतान ने उसे यह साबित करने के लिए कि वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है पत्थरों को रोटी में बदलने का प्रलोभन दिया, मत्ती 4:3। जिस प्रकार शैतान ने हवा को अदन में परमेश्वर के वचन पर संदेह करने का प्रलोभन दिया था, उसी प्रकार अब उसने मसीह को उस बात की वैधता पर संदेह करने का प्रयत्न किया जो परमेश्वर ने उसके बपतिस्मे के समय कही थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मत्ती 3:17। यदि मसीह ने बात को अपने हाथों में ले लिया होता खुद को दिव्य पुत्र होने को प्रमाणित करने के लिए पत्थरों को रोटी में बदल दिया होता तो हवा के समान परमेश्वर में विश्वास की कमी को प्रकट करता, उसका विशेष कार्य असफलता में समाप्त हो जाता। परंतु मसीह की सर्वोत्तम प्राथमिकता अपने पिता के वचनों के द्वारा जीना था। अपनी बड़ी भूख के बावजूद उसने शैतान की परीक्षाओं का उत्तर देते हुए कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह हम पाते हैं मत्ती 4:4 में। मसीह को पराजित करने के एक अन्य प्रयास में शैतान ने उसे सारे जगत के राज्यों का एक मनोरम दृश्य दिखाकर यह प्रतिज्ञा करते हुए कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मत्ती 4:9। उसका तात्पर्य था कि ऐसा करने से मसीह कलवरी के कष्ट को सहन किए बिना संसार को पुनः प्राप्त कर अपने विशेष कार्य को पूरा कर सकता है। एक पल के संकोच बिना और परमेश्वर के प्रति संपूर्ण निष्ठा में यीशु ने आदेश दिया, हे शैतान दूर हो जा। फिर महान विवाद में अति प्रभावशाली हथियार पवित्र शास्त्र का उपयोग करते हुए उसने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मत्ती 4:10। उसके वचनों ने युद्ध को समाप्त कर दिया। पिता पर अपनी संपूर्ण निर्भरता बरकरार रखते हुए मसीह ने शैतान को पराजित किया था। यह लौकिक विवाद अपनी पूर्ण स्पष्टता में कलवरी पर दिखाई देता है। जैसे जैसे यीशु के विशेष कार्य को समाप्त करने का समय निकट आ रहा था, शैतान ने उसे असफल करने के प्रयासों को तीव्र कर दिया। शैतान विशेष रूप से उस समय के धार्मिक अगुओं का उपयोग करने में सफल रहा जिनकी मसीह की लोकप्रियता पर ईर्ष्या इस तरह की परेशानी का कारण बनी कि उसे अपनी सेवकाई अंत करनी पड़ी। यूहन्ना 11:45-54। उसके चेले में से एक के विश्वासघात एवं झूठी गवाही के कारण यीशु को गिरफ्तार किया गया, सुनवाई की गई एवं मृत्यु दंड की सजा दी गई। मत्ती 26:63-64 और यूहन्ना 19:7। अपने पिता की इच्छा का संपूर्ण आज्ञा पालन करते हुए यीशु मृत्यु तक निष्ठावान रहा। मसीह का जीवन और उसकी मृत्यु दोनों के लाभ मानव जाति के सीमित संसार के पार पहुंचते हैं। क्रूस की बात करते हुए मसीह ने कहा, अब इस संसार का सरदार जो शैतान है निकाल दिया जाएगा। यूहन्ना 12:31। लौकिक विवाद क्रूस पर अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। मसीह ने शैतान की क्रूरता के विरुद्ध प्रेम और विश्वास योग आज्ञाकारिता का प्रदर्शन जो वहां किया, उसने सरदार शैतान की प्रतिष्ठा को छीन किया और उसके निश्चित पतन का आश्वासन दिया। मसीह पवित्र शास्त्र का केंद्र बिंदु है। परमेश्वर हमें सत्य जैसा कि यीशु में है समझने के लिए आमंत्रित करता है, इफिसियों 4:21, क्योंकि वह सत्य है। लौकिक विवाद में शैतान की रणनीतियों में से एक रणनीति है कि वह लोगों को विश्वास दिलाए कि वे यीशु के बिना सत्य को समझ सकते हैं। इसलिए सत्य के अनेक केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से या संयोजन में। पहला मनुष्य, दूसरा प्रकृति या अलोकनीय ब्रह्मांड, तीसरा शास्त्र एवं चौथा कलिसिया। जबकि सत्य को प्रकट करने में इन सभी का हिस्सा है। पवित्र शास्त्र मसीह को ऊपर दिए गए प्रत्येक का सृष्टिकर्ता एवं प्रत्येक से उत्कृष्ट प्रस्तुत करता है। ये सभी वास्तविक अर्थ केवल उसी में पाते हैं जिससे वे आए हैं। आज मसीह के अधिकार के विषय में उग्र तरीके से फैल रहा महान विवाद केवल उसकी व्यवस्था को ही नहीं परंतु उसके वचन पवित्र शास्त्र को भी शामिल करता है। बाइबल की व्याख्या के ऐसे दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं जिनमें आध्यात्मिक प्रगटीकरण के लिए बहुत कम या कोई जगह नहीं दी जाती है। पवित्र शास्त्र के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि यह किसी अन्य प्राचीन दस्तावेज से अलग नहीं है और उसी आलोचनात्मक प्रणाली के साथ उसका विश्लेषण किया जाता है। धर्म शास्त्रियों सहित मसीहों की बढ़ती संख्या अब पवित्र शास्त्र को परमेश्वर के वचन के रूप में नहीं देखती है, जो उसकी इच्छा का अचूक प्रगटीकरण है। परिणाम स्वरूप वे व्यक्ति यीशु मसीह के विषय बाइबल के दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाते हैं। उसका स्वभाव, कुंवारी से जन्म लेना, अद्भुत कार्य एवं पुनर्स्थान पर व्यापक रूप से बहस की जाती है। यीशु मसीह ने एक सवाल अपने चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उनमें से एक चेला सिमोन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मत्ती 16 का 15-17। आज प्रत्येक जन उसी प्रश्न का सामना करता है जिसे मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा था। इस जीवन या मृत्यु के प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के वचन की गवाही में व्यक्ति के विश्वास पर निर्भर करता है। प्रभु यीशु मसीह मार्ग और जीवन और सत्य है, और उसका वचन हमें परमेश्वर का इच्छा को प्रकट करता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को अपनाएं और यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसको भी ग्रहण करें, उसको स्वीकार करें और उसको उद्धारकर्ता मान करके बचाए जाएं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह में जो हमारा उद्धार करता है विश्वास करके पाप से विजय प्राप्त करें और उद्धार पाएं। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो, उन्हें बहुतायत से आशीष दे। हम सबों को तुझ में विश्वास करने और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर पिता। मैं तेरे सच्चाई में अगुवाई कर, तेरे पवित्र आत्मा का आशीष दे। हम सबों को तेरे राज में यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।